हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 23. आदित्य तो तुरंत ही अपने बालों में हाथ फेरता हुआ, अपने बाल सही करते हुए और शर्ट की बटन बंद करते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। और उस कमरे से बाहर आने के बाद वो घर में भी नहीं रुका और सीधा अपनी एक कार लेकर कहीं चला गया। लेकिन सुनैना उसके पीछे नहीं गई। वो बस वहां खड़ी किसी बुत की तरह आदित्य को वहां से जाते हुए देखती रही। उसने आदित्य को पूरी तरह अपने करीब आने से रोक तो दिया था, लेकिन फिर भी काफी देर तक वो नॉर्मल नहीं हो पाई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और धड़कनें अभी भी कुछ बढ़ी हुई थीं। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर जैसे अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस किया और फिर दरवाजे से थोड़ा आगे चलते हुए कमरे के अंदर आकर बैठ गई। बेड के सामने ही बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था, जिसके मिरर में सुनैना को इस वक्त अपना अक्स नजर आ रहा था। उसके बाल पूरी तरह से खुले और बिखरे हुए थे, साथ ही कपड़े भी थोड़े से इधर उधर थे और होठों पर अभी कुछ देर पहले की किस करने के निशान साफ नजर आ रहे थे। शीशे में खुद को ऐसी हालत में देखकर सुनैना जैसे खुद से ही कुछ शर्मासी गई और अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों को पकड़ते हुए थोड़ा सिमट कर बैठ गई और उस सामने के शीशे पर से भी अब उसने अपनी नजरें हटा ली और ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियां अपने होठों पर चलने लगीं और अभी कुछ देर पहले के लम्हे याद करते हुए एक शोक सी मुस्कुराहट उसके गुलाबी लबों पर बिखर गई। ये क्या हो रहा है मुझे? पहली बार किसी शख्स के इतना करीब थी मैं, वो भी किसी अनजान के जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जन्मों का रिश्ता है मेरा उससे, और उससे ज्यादा अच्छी तरह से मैं शायद किसी और को नहीं जानती। और आज अभी पता नहीं क्या हो गया था, खुद पर काबू नहीं रहा मेरा, क्यों उसे रोक नहीं पाई मैं, उसे खुद को किस करने से और खुद भी उसका साथ। सुनैना मन ही मन खुद से बातें करते हुए बोली और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी अब तक गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसके मन में अब ये सब बातें चल रही थीं। वो अब काफी कुछ सोच रही थी। उसके बाद सुनैना जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अपने कुर्ते की खुली हुई डोरी बांधने लगी। डोरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 23. आदित्य तो तुरंत ही अपने बालों में हाथ फेरता हुआ, अपने बाल सही करते हुए और शर्ट की बटन बंद करते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। और उस कमरे से बाहर आने के बाद वो घर में भी नहीं रुका और सीधा अपनी एक कार लेकर कहीं चला गया। लेकिन सुनैना उसके पीछे नहीं गई। वो बस वहां खड़ी किसी बुत की तरह आदित्य को वहां से जाते हुए देखती रही। उसने आदित्य को पूरी तरह अपने करीब आने से रोक तो दिया था, लेकिन फिर भी काफी देर तक वो नॉर्मल नहीं हो पाई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और धड़कनें अभी भी कुछ बढ़ी हुई थीं। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर जैसे अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस किया और फिर दरवाजे से थोड़ा आगे चलते हुए कमरे के अंदर आकर बैठ गई। बेड के सामने ही बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था, जिसके मिरर में सुनैना को इस वक्त अपना अक्स नजर आ रहा था। उसके बाल पूरी तरह से खुले और बिखरे हुए थे, साथ ही कपड़े भी थोड़े से इधर उधर थे और होठों पर अभी कुछ देर पहले की किस करने के निशान साफ नजर आ रहे थे। शीशे में खुद को ऐसी हालत में देखकर सुनैना जैसे खुद से ही कुछ शर्मा सी गई और अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों को पकड़ते हुए थोड़ा सिमट कर बैठ गई। और उस सामने के शीशे पर से भी अब उसने अपनी नजरें हटा लिया और ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियां अपने होठों पर चलने लगीं और अभी कुछ देर पहले के लम्हे याद करते हुए एक शोक सी मुस्कुराहट उसकी गुलाबी लबों पर बिखर गई। ये क्या हो रहा है मुझे? पहली बार किसी शख्स के इतना करीब थी मैं, वो भी किसी अनजान के जैसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जन्मों का रिश्ता है मेरा उससे, और उससे ज्यादा अच्छी तरह से मैं शायद किसी और को नहीं जानती। और आज अभी पता नहीं क्या हो गया था, खुद पर काबू नहीं रहा मेरा, क्यों उसे रोक नहीं पाई मैं उसे, खुद को किस करने से और खुद भी उसका साथ। सुनैना मन ही मन खुद से बातें करते हुए बोली और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी अब तक गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसके मन में अब ये सब बातें चल रही थीं। वो अब काफी कुछ सोच रही थी। उसके बाद सुनैना जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और अपने कुर्ते की खुली हुई डोरी बांधने लगी। डोरी बांधते वक्त उसे आदित्य की छुअन का एहसास उसे अपने बदन पर महसूस हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले ही अभी आदित्य ने तो उसकी गर्दन और कंधे पर किस करते हुए उसके कुर्ते की डोरी खोल दी थी। कितना अच्छा और पाक एहसास था ये, जिसमें सुनैना को एक पल के लिए कुछ भी गलत नहीं लगा, ना आदित्य का उसे छूना और ना ही इस तरह उसके करीब आना। वो चाहकर भी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब भूल नहीं पा रही थी और ना ही आदित्य का ख्याल अपने मन से निकाल पा रही थी। न जाने कैसी कशिश थी आदित्य के ख्यालों में, जो बार बार सुनैना को अपनी तरफ खींच रही थी, और वो भी डोर से बंधी किसी पतंग की तरह जैसे उसकी तरफ ही खींची चली जा रही थी। सुनैना ने जानबूझकर अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हुए अपना मोबाइल फोन उठाया और उसमें आखिरी मैसेजेस नैना के ही पड़े हुए थे, और उन मैसेजेस को देखते ही सुनैना को अपनी बहन नैना की याद आई, और साथ ही उसे ये भी याद आया कि उसने अब तक नैना को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है, और साथ ही नैना से इतनी ज्यादा कोई बात भी नहीं हुई है उसकी पिछले एक हफ्ते से। आखिर वो कहाँ है, कैसी है, वो सोचकर अब सुनैना को नैना की काफी फिक्र होने लगी थी। सुनैना ने जल्दी से नैना का नंबर डायल किया, लेकिन पूरी बेल रिंग होने के बाद भी दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो सुनैना थोड़ी सी परेशान हो गई और खुद से बातें करते हुए बोली, आई होप आप ठीक हो दी, इतने दिनों से बात ही नहीं हो पाई आपसे ठीक से, बहुत कुछ बताना है आपको, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है, पता नहीं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा। ओ वाओ, कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी बनी है, अब तो जब भी मैं यहाँ आऊँगा बिना तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पिए यहाँ से नहीं जाने वाला, नकुल नैना की हाथ की बनी कॉफ़ी पीकर उसकी तारीफ करते हुए बोला। तो उसकी इस तारीफ के जवाब में नैना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। ये लीजिए, नैना ने अपने बैग से एक कागज़ निकालकर नकुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? नकुल को समझ नहीं आया कि नैना उसे क्या दे रही है, तो उसे नैना से पूछा, आपको याद होगा मैंने आपको कल रात बताया था कि मैंने कई जगह पर ऑडिशन दिए हैं, तो आज सुबह ही मुझे एक जगह से कॉल आया था और वही थी आज मैं सारा दिन, और पता है मुझे उन लोगों ने अपनी नेक्स्ट एड फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो ये उसका साइनिंग अमाउंट ज्यादा तो नहीं है, 20,000 ही है, तो वही मैं आपको, नैना नकुल को पूरी बात बताते हुए बोली। वेट वेट वेट, ये तो तुम्हारे पैसे हैं ना, आई थिंक तुम्हारी फर्स्ट सैलरी, तो तुम ये मुझे क्यों दे रही हो, तुम्हें भी तो पैसों की काफ़ी ज़रूरत होगी ना इस वक्त, आखिर कोई और है भी तो नहीं तुम्हारे साथ। नकुल उसकी बात पर अपनी जगह पर से अपना चेहरा थोड़ा पीछे ले जाते हुए उसकी तरफ ही देखकर बोला, हाँ मुझे भी ज़रूरत तो है पैसों की, लेकिन ये आप इस घर का रेंट समझकर रख लीजिए, मैं ऐसे ही फ्री में यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़। नैना फिर से वो चेक नकुल की तरफ ही बढ़ाते हुए बोली, अरे नहीं अभी कल ही तो आई हो, तो यहाँ अभी एक दिन का इतना रेंट थोड़ी ना बनता है। हाँ लेकिन जब तक रह रही हूँ तब तक का, नैना उसके मजाक पर भी काफ़ी सीरियस रहकर ही जवाब देते हुए बोली, इसे तुम अपने पास ही रखो, तुम्हें अभी ज्यादा जरूरत है इसकी। बोलते हुए नकुल ने सुनैना के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसका दूसरा हाथ उठाकर चेक पर रख दिया, तो नैना हैरानी से उसकी तरफ से ही देखने लगी, जैसे कि कुछ कहना या पूछना चाह रही हो लेकिन बस बोल नहीं पा रही हो इस वक्त। क्रमशः